धर्मशास्त्र में चार कौन कौन से, गीता, कुरान, बाइबल और बौद्धता धर्मपद, जिससे मुख्य धर्म की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी बौद्ध धर्म का शास्त्र, तो वृद्धि होती जाती है। पुत्र पुत्र भी सब गीता के ही हो गए। ज्यादा उसके बाल बच्चे हो गए, ये सब गीता के ही बाल बच्चे हो गए। पुत्र और पुत्र इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। गीता मैंने गीत महिमा महिमा तो मैंने सीखी नहीं होगी, तो गीता भी जरूर मैंने सुनी की होगी। पहले सौ मिलेगी, जैसे गीता माता कहा जाता है, माता को इस घर किताब को नहीं कहा जाता, और इस माता के बच्चे भी हुए होंगे, ये बच्चे के बच्चे हुए होंगे।
और रुंग के वर्ष की बात है तो शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं, सन 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बताया, लेकिन एक वर्ष रुंग का जुड़ गया तो 77 संपूर्णता वर्ष घोषित किया गया। माना जिस युग की भी शूटिंग होती है उस शूटिंग के चार अवस्थाओं की शूटिंग होने के पश्चात जो भी टाइम है उसमें एक वर्ष रुंग का जोड़ा जाता है। चाहे सतयुग की शूटिंग हो, त्रेतायुग की शूटिंग हो, द्वापर की हो या कलयुग की हो। जैसे 50 रुपया किसी को देते हैं दान में तो 50 के साथ 1 रुपया और ऐड किया जाता है। जैसे 100 देते हैं तो 100 के साथ 1 रुपया और ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चों के लिए पहले से नहीं बताया जाता, लेकिन जब टाइम पूरा होता है तो उसी टाइम एक की रुंग और बढ़ाई दी जाती है। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो खरीदार सब्जी लेता है, दुकानदार देता है, महंगाई बढ़ती जाती है तो खरीदार संतुष्ट नहीं होता, तो दुकानदार क्या करता है, अच्छा अच्छा ये थोड़ा सा और ले जाओ, तो धनिया मिर्चा कुछ न कुछ और दे देगा। तो ऐसे ही बाप दादा तो टाइम की रुंग दे देता है। अच्छा तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ समय के अनुसार, तो एक वर्ष ये रुंग का और बढ़ाई दिया। तो सती की शूटिंग हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं होती है। चार अवस्थाओं की शूटिंग के बाद जैसे चार युगों के बाद एक संगम युग की रुंग मिलती है विशेष पुरुषार्थ करने के लिए, विशेष परिवर्तन करने के लिए, तो पांचवा युग हो गया ना। ऐसे ही चार युग हैं, चार अवस्थाएं, तो हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं उदी हुई है। जब सतयुग की शूटिंग हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, तो जब से जनसंख्या वृद्धि हुई तब से मानी जाएगी सतयुग की शूटिंग। 60-61 से ब्राह्मणों की दुनिया में पहली बार चित्र बनना शुरू हुए, छपना शुरू हुए और उनसे सेवा की शुरुआत हुई, ब्राह्मणों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। नहीं तो सिंध हैदराबाद में जो 9 लाख थे वो 9 लाख ही ब्राह्मण रहे, भले जन्म लेते रहे, शरीर छोड़ते रहे, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। जब 9 लाख की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू होती है तो सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। तो सन 7-71 से जब से चित्र बने और प्रचार प्रसार में आए तो ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि होने लगी। और सतयुग की शूटिंग के चार अवस्थाओं की शुरुआत हो गई। 16 वर्ष में चारों युगों की शूटिंग समाई गई, माना 61 से लेकर के 76 तक। मम्मा बाबा ने जब तक शरीर छोड़ा तब तक साकार में पालना मिलने के कारण सतयुगी द्वापर युगी तत्व प्रधान और सत्व सामान्य की शूटिंग हुई। और जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, साकार चला गया, तो देहधारी गुरुओं के आधार पर द्वापर और कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई। मेले मलाखड़े जब तक शुरू नहीं हुए तब तक द्वापर युग की शूटिंग रही। और जब मेले मलाखड़े शुरू हुए, देवी पूजा शुरू हो गई, तो कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई। 73 में पहला मेला हुआ रामलीला ग्राउंड में, और उसके बाद हर बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े मेलों का आयोजन होने लगा।
आप उस दिन बोले थे कि रामलीला मैदान में जैसे मेला हुआ था तो यहाँ भी ऐसे, तो ये द्वापर युग का कली चल रहा है ना, कली उस समय तो सत्ययुग का कली था,
लेकिन ये द्वापर युग का अंत हो रहा है। द्वापर युग पूरा सुन लो, तो 76 तक सत्य की शूटिंग का अंत हुआ, चारों अवस्थाएं पूरी हो जाती है। ज्ञानामृत पत्रिका में भी ये छाप दिया गया कि 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला अब तक, माने 73 तक। 73 में पहला मेला शुरू हुआ, लाखों लाख की तादाद में लोग मेलों को देखने आने लगे। हर बड़े बड़े शहर में जो मेले हुए, तो 73 से लेकर के और 76 तक 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को और संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं। मुरली में सतयुग की अंत की आबादी 2 करोड़ बताइए, और 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बताया, तो 2 करोड़ आबादी भी 76 में पूरी होती है और बाप की प्रत्यक्षता की भी शुरुआत होती है। जो भी विशेष सात्विक आत्माएं हैं, जो सतयुग की शूटिंग में हिस्सा लेती हैं, चाहे वो राजवर्ग की हो, प्रजावर्ग की हो, जब ज्ञान में आ जाती हैं, उनकी चारों अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि पहला वर्ण है देवतावर्ण, देवतावर्ण का कनेक्शन है सतयुग से, तो देवतावर्ण की आत्माएं ही क्षत्रिय बनती हैं, द्वापर में वैश्य बनती हैं, कलयुग में शूद्र बनती हैं, फिर संगम युग में ब्राह्मण बनती हैं। उन आत्माओं के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता विशेष निधि हुई है, क्योंकि वो सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है और सत्य युग की स्थापना करने वाला है। त्रेता युग, द्वापर या कलयुग की स्थापना करने वाला नहीं है। तो जो भी सत्ययुग में आने वाली विशेष आत्माएं हैं, जब उनकी शूटिंग पूरी हो जाती है, जिन आत्माओं का कनेक्शन बाप से विशेष जुड़ा हुआ है, कौन से बाप से, जिस बाप के वारसदार भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, भक्त भी बनते हैं, कौन सा बाप है जिसके भक्त और प्रजा बनती है, सुप्रीम सोल है या ह्यूमैनिटी का बाप है जो मनुष्यों का पिता है, प्रजापिता, जिस प्रजापिता में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, फिर प्रत्यक्ष होता है, वो ह्यूमैनिटी के बाप का कनेक्शन है वारसदारों से, भक्तजनों से, प्रजावर्ग से, तो वो विशेष आत्माएं जो सत्य की आत्माएं हैं, उनकी चार अवस्थाओं की जब शूटिंग पूरी होती है तो बाप प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच। कौन से ब्राह्मण? जो ऊंचते ऊंचे चोटी के ब्राह्मण हैं, हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं, और उन चुनी हुई आत्माओं में से आधारभूत जड़ पहले प्रत्यक्ष होती है। जड़ों से तना निकलता है, तने से टहनियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं, और उसमें से बीज पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं। जब वृक्ष की संपूर्णता होती है, चारों अवस्थाएं पूरी होती है, तो सत्य की शूटिंग में सन 76 में, जो सन 36 के आदिकाल में शूटिंग में विशेष चार घोड़ों की बात बाबा ने बोली है कि पहले बंगाल में रथ में चार घोड़े जोते जाते थे, वो चार विशेष आत्माएं हैं जो गीता में मुख पृष्ठ पर दिखाए जाते हैं। चार मन रूपी बुद्धि रूपी घोड़े हैं जिनकी बुद्धि की लगाम सुप्रीम सोल बाप भगवान के हाथ में होती है। वो चार धर्मों की चार विशेष आत्माएं प्रत्यक्ष होकर बाप को ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष कर देती है। अंतर सिर्फ यही होता है, कमी सिर्फ यही होती है कि पहले वो अपने को प्रत्यक्ष करती है और साथ में फिर बाप को प्रत्यक्ष करती है। ये विदेशीयता आ जाती है। वैसे भी वाणियों में बोला है, अव्यक्त वाणी में खास बोला है, बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चों के द्वारा। कौन से बच्चों के द्वारा? देशी या विदेशी? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि जितने भी विदेशी धर्म हैं वो सब बाद में आए, भावना में तीखे नहीं होते हैं लेकिन बुद्धि में तीखे होते हैं। ज्ञान बुद्धि का विषय है, ज्ञान से ही पाप की पहचान होती है। तो वो विदेशी आत्माएं बाप को पहले पहचान लेती हैं बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर। इसलिए 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया, लेकिन 76 में बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, एक वर्ष और रुंग में जोड़ा गया। 77 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया। तो 77 में, क्योंकि प्रत्यक्षता के लिए ये साकार दुनिया है, साकार दुनिया में कुछ तो माध्यम चाहिए। तो जैसे बेसिक नॉलेज में पहले पहले एक पुस्तक छपी और उसके साथ साथ चित्र भी बने, कौन सी पुस्तक पहले छपी थी मालूम है? सच्ची गीता, चौड़े साइज की, जो बाद में गवर्नमेंट के द्वारा बैंड कर दी गई, उसकी 500 प्रतियां ही छप पाई थी। ऐसे ही एडवांस पार्टी की शुरुआत में सन 77 का अंत होते होते सच्ची गीता सार पुस्तक छापी गई, जो बाद में देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा चुराई ली गई और उसकी प्रतियां जला दी गई। थोड़ी बहुत जो बची वो बांट दी गई। तो सच्ची गीता सार पुस्तक छपने तक, हाथों में पहुंचने तक ब्राह्मणों की दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता आखिरी हो ही गई, वो बीज पड़ गया, प्रत्यक्षता की शुरुआत हो गई। तरह प्रत्यक्षता नहीं हुई, क्योंकि और युगों की शूटिंग भी तो बाकी है। बाप की प्रत्यक्षता में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का योगदान है। सारी ह्यूमिनिटी का बाप है, सर्व आत्माओं का पिता उसमें मौजूद है। इसलिए जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो नास्तिक धर्म की ही क्यों न हो, वो जब तक उस बाप को पहचान नहीं लेती तब तक नहीं कहेंगे कि बाप की प्रत्यक्षता पूरी हुई। तो अभी पहले तो बात है ब्राह्मणों की दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता। जो भी ब्राह्मण बनते जाते हैं, चाहे वो बेसिक नॉलेज के हों, एडवांस नॉलेज के हों, उनकी बुद्धि में वो चैतन्य बाप जो प्रैक्टिकल में आकर के स्वर्ग की स्थापना के कार्य में लगा हुआ है, उसकी पहचान आनी चाहिए। तो उसकी शुरुआत कब से होती है? 76 से। किसके द्वारा? जो चार मुख्य धर्म बताए, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, उन चार मुख्य धर्मों के जो स्थूल बीज हैं, उन बीज रूप चार आत्माओं के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। उसमें एक पहला बीज तो स्वयं राम बाप वाली आत्मा है, स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम है छुपा रुस्तम बाद में खुले। लेकिन जो और बाकी तीन धर्म के तीन बीज हैं, वो उस बाप को पहचान लेते हैं और अपने स्वरूप को भी पहचान लेते हैं, और पहचानने के साथ साथ अपनी प्रत्यक्षता के साथ साथ बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं। तो 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष है, अव्यक्तवाणी में घोषित हुआ प्रत्यक्षता वर्ष, और 77 में ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में एडवांस पार्टी के द्वारा बाप ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने लगा। लेकिन किसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ? विदेशियों के द्वारा। इसलिए विदेशियों में दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से मानी जाती है। वास्तव में रात्रि के 12 बजे तक सूर्य अस्त होता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, और रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय की ओर आने लगता है। लेकिन उदय होता नहीं है, बुद्धि से पहचाना जा सकता है। तो वो विशेष आत्माएं जो सप्तऋषि हैं, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, जो शास्त्रों में गायन है, वो योग बल के द्वारा पहचान लेते हैं। भले उन ब्रह्म ऋषियों की मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है, लेकिन विशेष आत्माएं, बड़े बड़े धर्म पिताएं जो हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनके आधारभूत हैं। और उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। लेकिन संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी तीन युगों की शूटिंग अभी बकाया है। तो 16 वर्षों में सतयुगी शूटिंग की चार अवस्थाएं पूरी हुई, एक वर्ष रुंग का जोड़ा, 77 पूरा हुआ संपूर्णता वर्ष। उसके बाद 12 वर्ष त्रेता युगी शूटिंग के जोड़े जाए तो कौन सा वर्ष आता है? 89 और 88 का कनेक्शन है अव्यक्त बाप दादा के उस विशेष पार्ट की तरफ जो गुलदार दादी में चल रहा है। गुलजार दादी में 87-88 में जो सीजन चला, उसमें क्या विशेषता हुई याद है? 88-87 में अव्यक्त बाप दादा सारा ही सीजन सारा ही वर्ष गुलजार दादी में नहीं आए। अव्यक्त बाप दादा ने अपनी सारी पावर कहाँ लगा दी? एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता में सारी पावर लगा दी, जिसका रिजल्ट आया 89 में, जैसे बोला हुआ है मुरलियों में कि कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली सी कौंध जाती है, है तो गर्भ महल में प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु पूरी होती है 87-88 में। 100 वर्ष आयु पूरी होने के बाद ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई, ब्राह्मणों की दुनिया के अनुसार भी ब्राह्मणों की आयु 100 वर्ष, और दादा लेखराज की भी 100 वर्ष की आयु 88 में पूरी होती है। तो मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खत्म होगी तो जन्म कहाँ होगा? अमरलोक में जन्म होगा, बैकुंठ लोक में जन्म होगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है पीपल के पत्ते पर गर्भ महल रूपी अंडे में कृष्ण बड़े आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं है। वो पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया कहाँ पड़ी हुई है? संसार सागर में। संसार सागर में उस नैया को कितने भी भारी से भारी हिलोरे आए, माया के झलकोरे आए, लेकिन कृष्ण की सोल को ये निश्चय है कि सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी, इसलिए बड़े आराम से गर्भ महल में बैठा हुआ दिखाया गया है। अंगूठा चूसता हुआ, अंगूठा, अंगूठे के आकार की आत्मा दिखाते हैं शालिग्राम, तो वो अंगूठा है आत्मा की यादगार। आत्मा के मनन चिंतन मंथन में वो आत्मा बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाती है। 76 से बीज रूप बाप में जो प्रवेशता होती है ब्रह्मा की सोल और शिव की सोल की प्रत्यक्षता भी होती है, तो ब्रह्मा की सोल संग के रंग से बीज रूप स्टेज में टिकते टिकते 100 वर्ष की आयु पूरी होते होते बीज रूप स्टेज में परिपक्व अवस्था में पहुंचती है। जो मनन चिंतन मंथन का माता है, अभ्यास है, वो परिपक्व हो जाता है। कौन से वर्ष में? 88 जब परिपक्वता आ जाती है तो निर्णय शक्ति और परख शक्ति में भी परिपक्वता आती है, इसलिए वो पूरा ही वर्ष अव्यक्त बाप दादा ने बेसिक नॉलेज से संन्यास लेकर और सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। रिजल्ट क्या हुआ? कृष्ण की सोल जब गर्भ महल में प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी, प्रवेश करेगी, तो कुछ तो परिवर्तन दिखाई देगा ना। जो मुरली में बोला है कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली सी कौंध जाती है। 89 में एक साथ एडवांस पार्टी में 9 कन्याएं एक ही वर्ष के अंदर समर्पित हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में जब ये पता लगता है तो चमत्कार जैसा हो जाता है। एक सेकंड के लिए बिजली सी कौंधती है और फिर अंधकार हो जाता है, क्योंकि माया का पाम्प एंड शो का आडंबर तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तो भक्तों की बुद्धि उसमें उलझ जाती है और ज्ञान की जो बातें हैं उनमें बुद्धि नहीं ठहर पाती। तो 87-88 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। जो 13 वर्ष हैं त्रेता युग की शूटिंग के, वो रुंग सहित पूरे हो जाते। 16 वर्ष सतयुगी शूटिंग, 12 वर्ष त्रेतायुगी शूटिंग, और दो वर्ष रुंग के जुड़ाए तो कौन सा वर्ष आ गया 89 90। यहाँ से द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत होती है, उसका भी टाइम जुड़ा हुआ है 8 वर्ष। तो 8 वर्ष ऐड किए जाए तो आता है कौन सा वर्ष 98। और 98 में भी एक वर्ष रुंग का जोड़ा जाए तो 99 आ जाता है। 99 का आना माना त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग पूरी होना। द्वापर युग की शूटिंग जब पूरी होती है तो जैसे सतयुग की शूटिंग में 3 अवस्थाओं की पूर्ति हुई और कलयुगी तमोप्रधान शूटिंग की जब शुरुआत हुई तो मेले मलाकड़े शुरू हो गए, ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग की पूर्ति होते होते एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया में मेले की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये मेला उन मेला बनाने वाले मेलों की तरह नहीं है। क्यों, क्या कारण, उन मेलों में मेला क्यों इकट्ठा होता है? और ये विशेष मेला जो है, इस मिलन मेले से आत्माएं पवित्र बन जाती है आधा कल्प के लिए। उसमें क्या विशेष खास बात होती है, उन मेलों में साकार में भगवान नहीं होता, साकार में भगवान के साथ मिलन मेला नहीं होता, आत्माओं का नदियों का मेला होता है। इसलिए मेले में मेला इकट्ठा होता है। और ये जो मेला है उसका तो नाम ही है आध्यात्मिक गंगा सागर मेला। कैसे मेले की शुरुआत है, ये भी एडवांस पार्टी में पहले बड़े विराट संगठन की शुरुआत है। क्या अंतिम रूप नहीं है, शुरुआत है, अंत का रूप तो विराट रूप होगा। तो जो शुरुआत है उसमें बाप की प्रत्यक्षता की भी शुरुआत है। नहीं तो भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े जो मेले मनाए जाते हैं वो किस बात की यादगार है? जरूर भगवान बाप से मिलन मेला मनाया है संगठित रूप में, जिसकी यादगार ये मेले चल रहे हैं, लेकिन वो भक्ति मार्ग के मेले भक्ति मार्ग के हैं। आध्यात्मिक गंगा सागर मेला, उसके बाद होती है कलयुग की शूटिंग, कितने वर्ष की 4 वर्ष। कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की आयु तिगुनी, सतयुग की आयु 4 गुनी। इसलिए शास्त्रों में दिखाई दिया गया है सतयुग को सबसे लंबा टाइम दे दिया। तो बात कहां की है, संगम युग की यादगार सारी शास्त्रों में जुड़ी हुई है। तो 99 के बाद 4 वर्ष और ऐड किए जाए क्या आता है 2003 और 1 वर्ष रुंग का। इससे जास्ती गुंजाइश नहीं है ब्राह्मणों की पुरानी संगम युग दुनिया के खलास होने और ब्राह्मणों की नई संगम युग दुनिया की स्थापना होने का टाइम फिक्स हो जाता है। चारों युगों की शूटिंग का रहस्य जिसकी बुद्धि में आ जाएगा वो कभी हिलेगा नहीं, न खुद हिलेगा न दूसरों को हिलाएगा, अज्ञानता के कारण खुद हिलना और दूसरों को हिलाना के काम होता है। कोई आत्माओं का पास चलता है थमाने का और कोई आत्माओं का पास चलता है अज्ञानता के कारण भगाने का। जो ज्ञानी जो आत्माएं होंगे वो सबको थमाने का काम करेंगे, काय में थमाने का, ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनाने के कार्य में थमाने का काम करेंगे, और जो अज्ञानी होंगे वो दूसरों को हिलाने का और भगाने का काम करेंगे। अभी द्वापर युग की शूटिंग के तामसी पीरियड में हालत बहुत नाजुक हो गई एडवांस पार्टी की, तो कलयुग की शूटिंग के अंत में क्या हाल होगा? क्योंकि बाबा ने तो बोल दिया, बताया, सब कुछ दिया, विनाश कब होगा? जब सब विनाश की बात से निश्चिंत तो हो जाएंगे, अब नहीं होना कुछ भी, तब अचानक विनाश हो जाएगा। अभी तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के विनाश और स्थापना की विशेष बात है, बाहर की दुनिया की बात बाद में। तो जो षष्ठी चक्र का चार युगों का आवर्तन होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें मुझने की कोई बात नहीं है। जो भी चल रहा है सब ठीक चल रहा है। पहले युग की शूटिंग होती है तो पहली प्रत्यक्षता में शिव शंकर भोलेनाथ शिव बाप की प्रत्यक्षता नुदी हुई। दूसरी त्रेता युग की शूटिंग पूरी होती है तो बाप का बच्चा कौन? बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कौन सा बच्चा? कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जयंती गर्भ महल की वो नुदी हुई है। और द्वापर युग की शूटिंग के अंत में वो बच्चे की प्रत्यक्षता किसके द्वारा होती है? बच्चा जन्म किससे लेता है? लेता तो माँ से है, लेकिन जन्म देने का निमित्त है कौन माना जाता है? बाप माना जाता है। क्योंकि त्रेता युग की शूटिंग है तो त्रेता युग की शूटिंग में मुखिया आत्मा कौन मानी जाती है? राम बाप वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा के द्वारा कृष्ण की सोल की प्रत्यक्षता रूपी जन्म नुधा हुआ है। और शास्त्रों में लिख दिया है कि द्वापर में कृष्ण भगवान आए, उन्होंने द्वापर के अंत में महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध कराई दिया। उस ग्रह युद्ध में महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष हुए द्वापर के अंत में, और पापी कलयुग की स्थापना कर दी। बातें सब कहां की है? ये शूटिंग पीरियड की सब बातें हैं। तो कृष्ण की सोल जो गर्भ महल में पीपल के पत्ते रूपी हल्की नवैया पर पार्ट बजाए रही है, चमत्कारी पार्ट, वो कोई द्वापर युग के अंत में नहीं आती है। वो तो शूटिंग का हिसाब किताब है, जो ज्ञान में समझने की बात है। ये तीसरा अवतार शास्त्रों में नुदा हुआ है, संभवामि युगे युगे, हर युग में प्रत्यक्ष होता हूँ, जन्म लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। तो चार युगों में कितने अवतार हुए? चार अवतार हुए। तो तीसरा ये हुआ, पहला शिव, दूसरा राम, तीसरा कृष्ण, और लास्ट में विष्णु अवतरण, जिसके साथ साथ कलंकी अवतार की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। कलयुग की शूटिंग के शुरुआत में कलंक शुरू होते हैं और कलयुग की शूटिंग के लास्ट में सारी दुनिया में वो कलंक की अवतार प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस तरह चार युगों में ये चार अवतार विशेष नुधे हुए हैं। इसमें संशय में आने की बात नहीं है। बता तो दिया, विष्णु है संपूर्णता का रूप और कलंकी है अपूर्णता का रूप। ये पांव और चोटी मिलते हैं, प्रत्यक्षता हो जाती है। जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो गुलाटी लगाते हुए परिक्रमा करते हैं, सर नीचे पांव ऊपर, फिर पांव नीचे सर ऊपर। तो गुलाटी लगाते समय सर और पांव दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ये चार युगों की शूटिंग रुधी हुई है, जैसे साकार दुनिया में ड्रामा बाजियां चलती हैं, ड्रामे खेले जाते हैं, तो उनमें तीन चार सीन होते, ये भी बेहद का ड्रामा है। इस ड्रामा को भी साक्षी होकर के देखना चाहिए। जो साक्षी होकर के देखते हैं वो कभी हिलते नहीं है, नहीं तो माया रावण अज्ञानता की नींद में सुलाए के हिलाती डुलाती रहती, जैसे कोई सोते सोते सपने में भयभीत हो जाता है, छक्के छूट जाते हैं, तो ऐसे ही यहां भी होता है। तो माया की अज्ञानता की नींद से अपने को बचाना है। बाप के जागती ज्योति बच्चे बनना है, किसी बात में मुझने की बात नहीं है। जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है सब कल्याणकारी, कोई बात में अकल्याण की बात नहीं है, और हिलने डुलने की तो बात ही नहीं। अमरनाथ के अमर बच्चे हैं, अमरनाथ बाप है तो बच्चे भी कैसे हैं, अमर बच्चे हैं। माया हिलाएगी डुलाएगी, अचेत कर देगी। लक्ष्मण को क्या हुआ, अचेत कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही कि खलास हो जाएंगे, खलास होने की बात नहीं है। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, जो भी बीज रूप बाप के बच्चे हैं, वो सब अमरनाथ की अमर औलाद है। हाँ, उनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, जैसे बीज होता है उसमें छिलका होता है, छिलका उतार दिया जाता है, स्वच्छ बीज रह जाता है। तो ये देहवान का छिलका है दूसरे दूसरे धर्मों का, उतर जाएगा तो माया फिर नजदीक नहीं आवेगी। अज्ञानता का छिलका कहो, देहवान का छिलका कहो, विधर्मियों के संग के रंग का छिलका कहो, वो छिलका उतरने की बात है। ये आत्मा रूपी चावल हैं, इन पर जब छिलका चढ़ा हुआ होता है तो उसे धान कहते हैं।
ये अनिश्चय नहीं है, कभी अलग अलग बोल रहा है, गीता पाठ चले वाले अलग बोल रहा है, सेंटर वाले अलग, सेंटर वाले और गीता पाठ चले वाले सब अलग अलग बोल रहे हैं ना, इसीलिए आप बोलने के बाद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है कि 2004 तक जब हुआ तो लक्ष्मी नारायण का जन्म हम कब दिखाएंगे?
लक्ष्मी नारायण का जन्म तो मुरली में ही बता दिया है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। सत्युग के, सत्युग के ही तो लक्ष्मी नारायण, सत्युग के लक्ष्मी नारायण तो राधा कृष्ण बनते हैं। राधा कृष्ण का जब जन्म होगा, उसके बाद जब उनका कोरोनेशन होगा, गद्दी पे बैठेंगे तब तो संगम भी खलास हो जाएगा। गद्दी पे बैठे 9,16,000 की जनसंख्या हुई, खेल खलास, फिर तो संगम 100 साल का पूरा हो जाएगा।
नहीं, वो
2001 से 18 तक, वो गलत कहा है,
चार ले गए तो उधर से 18 ले,
वो कुछ नहीं, उससे कोई उसका कनेक्शन नहीं है, उससे क्या कनेक्शन है,
मतलब 2008 में राधा कृष्ण का जन्म
होगा, बिल्कुल होगा, होगा नहीं तो 2036 में जाकर के 9,16,108 की जनसंख्या की पूर्ति कहाँ से होगी? हैं? हैं? 18 अंक संख्या का बहुत महत्व है।
तो हम कैसे 4 से 18 अंक,
4 से 18, 4 से क्यों जोड़ रहे हैं 18 को? 18 को 4 से क्यों जोड़ रहे हैं?
डिस्कशन के बाद
ऐसा तो कुछ नहीं बताया, ये तो कोई बात नहीं हुई है?
तो डिस्ट्रक्शन जो
डिस्ट्रक्शन किसका? अरे जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना डिस्ट्रक्शन होता जाता है। 76 में भी स्थापना और विनाश की बात थी, तो क्या स्थापना विनाश हुआ नहीं? अरे बुद्ध रूपी क्षेत्र में कोई विशेष आत्माएं दो हैं जिनके बुद्धि में स्थापना की भी शुरुआत हुई, तो विनाश का बस विनाश की भी शुरुआत हो गई, विनाश भी हो गया, स्थापना भी आप हुए, मर गई दुनिया। बुद्धि के आधार पर जितने इस स्टेज पर अपने को स्थिर कर लिया उसके लिए दुनिया खलास हो गई, नई दुनिया की शुरुआत हो गई।
संगम योगी स्वर्ग
संगम योगी स्वर्ग तो अभी भी अपनी स्टेज की बात है, अभी भी बाबा के पहुंचकर, बाबा के पास पहुंचकर जो निसंकल्पी स्टेज का अनुभव कर लेते हैं तो शांति धाम का उनका समझो उद्घाटन उस समय हो गया। शांति धाम के साथ साथ सुख धाम का भी उद्घाटन हो जाता है। आगे पीछे गेट खुलते हैं कि एक साथ गेट खुलते हैं? सुख धाम और शांति धाम का गेट एक साथ खुलता है कि आगे पीछे खुलता है? आगे पीछे खुलता है। हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का द्वार एक साथ खुलता है। लास्ट आत्मा परम धाम पहुंचती है और फर्स्ट आत्मा सुख धाम आ जाती है। दोनों ही धाम कभी खाली नहीं होते, शांति धाम भी कभी खाली नहीं होता। तो साकार दुनिया में भी एक तंत्र रूपी रंगमंच पर ऐसा नहीं है कि खाली हो जाए। बर्फ के अंदर तो दबे हुए रहेंगे ही।
कब?
पहले बुद्धि से दबो, बुद्धियोग से संकल्पों को जाम करो। संकल्पों का खून जाम हुआ मैंने बर्फ में दब गए।
सृष्टि चक्र कैसे में बोला है कि 2000
हैं? सब इकट्ठे दौड़े ही दबेंगे। नंबर वार अभी भी दबते जा रहे हैं। कोई की स्टेज ऐसी बनती जा रही है कि संकल्प जब जाए तब जाम कर दे। संकल्पों को जाम करना एक सेकंड की बात। संकल्पों का खून जाम होता जाएगा तो स्थूल खून भी जाम होता जाएगा।
है
चालू नहीं होता है। स्थापना का काम के आधार पर है। जैसे जैसे स्थापना होती जाएगी वैसे वैसे विनाश भी होता जाता है। देखो संख्या 76 में ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में स्थापना हुई कि नहीं हुई? हुई। बौद्ध क्षेत्र में स्थापना हो गई। क्या मुख आत्मा लक्ष्मी नारायण बनने वाली है तो बुद्धि में स्थापना हो गई ना, शुरुआत तो हो गई। मकान बनता है तो स्थूल में पहले ही बन जाता है या पहले बुद्धि में खाका खींचता है बाद में कागज के ऊपर खींचता है? वो सूक्ष्म बतन हो गया बाद में स्थूल में बनता है। तो ऐसे ही ये नई दुनिया की शुरुआत और पुरानी दुनिया का विनाश तो 76 से ही शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे स्थापना का रूप विराट होता जाएगा वैसे वैसे विनाश भी होता जाएगा।
नहीं बाबा, उस सृष्टि चक्र का कैसे मैं बोला कि 2000 के आसपास
आसपास ही हो गया ना। आसपास का मतलब ये है कि बच्चे फिक्स ना हो जाए। अगर एक टाइम डेट बता देंगे तो बुद्धि तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। तो डेट कॉन्शियस न हो कुछ गुंजाइश बनी रहे इसलिए आसपास बोल दिया। कौन किस में बोलो, कौन सी डेट? 2016-17 तो डेट है वो, उसे डेट कहेंगे है? उसको डेट कहेंगे नहीं, उसको डेट कहेंगे। सारा बात अलग होती है, डेट बात अलग होती है। डेट में तो दिन भी निश्चित हो जाता है, महीना भी निश्चित हो जाता है, इसलिए डेट कभी फिक्स नहीं होती। मुरली में भी बोला, आगतवाणी में भी बोला, कभी डेट फिक्स नहीं बतावेंगे। फिक्स डेट बताएंगे डेट कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे, सोल कॉन्फ्रेंस कहाँ रहेंगे?
फिर स्कूल में होगा, सिस्टम में बोले
क्या? अभी तक बुद्धि में नहीं बैठा है कि 76 में स्थूल विनाश की बात थी या सूक्ष्म विनाश की बात थी, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बात थी या बाहर की दुनिया की बात थी। इतना क्लियर होने के बाद कोई कैसे कैसी नहीं है, कोई लेटर भी ऐसा नहीं है, पत्र व्यवहार में भी कोई ऐसा लेटर नहीं है, कोई लिटरेचर भी ऐसा नहीं है, कोई पंपलेट भी ऐसा नहीं है जिसमें एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया के अलावा बाहर की दुनिया के बिना इसकी बात की गई हो, लेकिन अज्ञानता के कारण अंदर अंदर ये बात चल रही है। जब पहले ही क्लियर कर दिया कि 76 में स्थापना और विनाश की शुरुआत सूक्ष्म बात है, ब्राह्मणों की संगति दुनिया के अंदर की बात है, तो बाबा ने पहले ही बोल दिया है तुम ब्राह्मणों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। तो जो सतयुग में ब्राह्मण है नंबर वार पुरुषार्थ संसार सती की शूटिंग में, उनका 2 करोड़ का अपना छोटा सा संसार तैयार हो चुका था, वही ब्राह्मण बन है, ब्राह्मण से देवता बनने वाले, उस सतयुग की स्थापना करने के लिए ही पाप आया हुआ है। त्रेता युग की स्थापना करने के लिए नहीं आता, त्रेता से लेकर द्वापर और द्वापर से लेकर कलयुग तक की शूटिंग तो हम बच्चे करते हैं, बाप उतरती कला का कभी लक्ष्य नहीं देता, बाप तो संपूर्णता का लक्ष्य देता है। जो उतरती कला में जाते हैं वो उतरती कला का लक्ष्य देंगे, जो उतरती कला में कभी जाता ही नहीं, जिसकी कलाएं बचती ही नहीं वो कलातीत है, वो चढ़ती कला का ही लक्ष्य देता है, संपूर्णता का ही लक्ष्य देता है।
उसमें यहाँ पे बानप्रस्थ अवस्था में आते हैं, बानप्रस्थ अवस्था में जाते तो 2002 का हिसाब हमने उस समय लगाया था।
लेकिन आपको डेट फिक्स कहाँ पता है?
तो हम
दूसरी बात, जन्म होने के बावजूद भी आत्मा सूक्ष्म बदन में जाती रहती है, छोटा बच्चा कभी पूर्व जन्म को याद करके कभी हंसता है स्वतः ही और कभी रोने लगता है, बाहर की दुनिया के प्रभाव से नहीं रोता है, वो अंदर अंदर जो बुद्धि के अंदर उसकी दुनिया पूर्व जन्म की दिखाई पड़ रही है उससे प्रभावित होकर के चलता है। तो उसे संपूर्णता कहें या शिशु अवस्था कहें? शिशु अवस्था है, बुद्धि कहाँ है? सारा खेल तो बुद्धि का है, इसलिए 2002 फिक्स थोड़े किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि साकार की जो एक्यूरेट जन्म तिथि है उसका पता किसको है? बाबा को, तुमको तो नहीं पता है, बाबा को पता है तो बाबा ही जाने, तुम क्यों बता रहे हो कि 2002 फिक्स है? हैं? बाबा से बच्चों को मिलना चाहिए तो नाक पकड़ के मिल जाएगा क्या? हैं? वो तो जब बाबा को जरूरत होगी बच्चों की अवस्था को देख करके बताने की जरूरत होगी तो बता देगा। जीवन कहानी में क्या दिखाया? हैं? डेट ऑफ बर्थ हुई, डेट हुई है 42 फरवरी, वो कागजी कार्रवाई है या वास्तविक बात है? वो लिखने वाले ने लिखा, छपाने वाले ने चौपड़ी छपाई? है? अच्छा,
बेंगल का जो चार घोड़ा आप बोला थी, हाँ? वो चार घोड़ा बेंगल का ही होगा?
कनेक्शन तो बंगाल से ही बताया है, बिल्कुल होना चाहिए। कौन है तो निकालो, रिसर्च करो बैठ करके, आपने ठेका लिया हुआ है सारी रिसर्च का है? एक का ठेका थोड़ा ही है, सभी का ठेका है। पूछो दीदी दादियों से जाकर के वो चार घोड़े कौन से थे। जब बीज हैं तो यज्ञ के आदि में भी जरूर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, जाली ही जाली। ये सब काले कारनामे हैं, कारीगल।
सभी पूछ रहे कि अष्टरत्न और फिक्स्ड हो गए।
अष्टरत्न तो अष्टरत्न की बात कर रही हो, बाबा तो कहते हैं कि 16,000 भी फिक्स हो गए, फिक्स हो गए, प्रत्यक्ष नहीं हुए अभी, मणके तैयार हो गए हैं लेकिन नंबरिंग अभी बाकी है। अभी तो 8 भी फिक्स नहीं हुए हैं नंबर, 8 जब फिक्स हो जाएंगे, 3 के अलावा और कोई भी चीज फिक्स नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बुद्धि योग फैलाया जाए, सर्विस का टोटल रिजल्ट देखा जाए तो वो नंबर निकल सकते हैं। वो फिर अपनी अपनी अनुमान की बात हो जाएगी। वेरीफाई तो बाबा करेगा, उनकी सेवा करेगी। बाबा तो बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके बताएगा नहीं कि इनका ये नंबर है। हर एक अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, वाइब्रेशन से अपने नंबर को खुद ही डिक्लेयर करेगा। ऐसे डिक्लेरेशन करने वाले तो बहुत होते हैं ना, ऐसे डिक्लेयर करने वाले ढेर होंगे। ढेर कहेंगे हम शिवाजी हैं, लेकिन जिनका प्रूफ मिलेगा वही तो माने जाएंगे। बिना प्रूफ प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे मान लेंगे क्या? प्रूफ चाहिए, और फिर सेवा का भी प्रूफ चाहिए। नंबर डिक्लेयर किस आधार पर होंगे? ऐसे ही हो जाएंगे, जो मुख से कहेगा उसका नंबर वही मान लिया जाएगा है? जो सेवा का बैलेंस बनाया है, बैंक बैलेंस, वो सेवा का बैंक बैलेंस ही नंबर को प्रत्यक्ष करेगा। नीचे वाला मणका कह नहीं सकता कि इस मणके को ऊपर क्यों रख दिया, मेरे को नीचे क्यों रख दिया गया। इतना वास्ट डिफरेंस होगा। जैसे मिलिट्री में ऊपर का जो ऑफिसर होता है उससे नीचे का ऑफिसर आंख नहीं मिला सकता, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ओम शांति।
मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा,
क्या
मतलब
99 में ही 16,000 चैतन्य चेहरे की प्रदर्शनी का इनाम बाप दादा प्रत्यक्ष करेंगे, टाइम पर प्रत्यक्ष होगा। तो 73 में बोला तो 74 के लिए हो गया पक्का है कि अभी 89 में आकर के डिक्लेयर हुआ? जब उससे इतने वर्ष लग सकते हैं तो ये कैसे फिक्स कहा जा सकता है कि 98 में बोला तो 99 के लिए ही बोला? ऐसा बड़ा अनुमान है। अनुमान नुकसान भी हो सकता है, अनुमान झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
बाबा ये जो अभी कलयुग का जो शूटिंग है, ये अभी मान लिया जाए कलयुग का शूटिंग स्टार्ट हो गया,
मेले बलाखनों की शुरुआत हो गई तो स्टार्ट नहीं हो गया? मेले मलाखड़े कलयुग में होते हैं या द्वापर त्रेता में होते हैं? कोई प्रूफ नहीं मिलता। मेले मलाखड़ों की शुरुआत ही तब हुई है, नदियों के किनारे मेले लगते ही तब हैं, जब कलह कलेश युग की शूटिंग शुरू हो जाती है।
इसलिए कभी कोई कोई बोलता है उस मेला में नहीं जाएंगे।
किस मेला में?
इसलिए मेला
उनकी बुद्धि में बाप का निश्चय नहीं बैठा हुआ है कि जहाँ बाप होता है वहाँ सच्चा मेला होता है, और जहाँ बाप नहीं होता है वहाँ मेले मेला बनाने वाले होते हैं। तुम उनको समझा ही नहीं पाती। तो हो गए सोल कांसेस का हुए। पुरुषार्थ तो कुछ न कुछ 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को करना है, तो एकदम लास्ट का जब हम लक्ष्य दे देंगे तो लक्षण कौन से आएंगे? एक की तरफ ध्यान नहीं देना।
जो कीर्तन
है क्यों कनेक्शन हर बात का है? 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ तो बाहर की दुनिया में वो कौन नारायण था? जयप्रकाश नारायण। उसका एजुकेशन गुजरात से नहीं शुरू हुआ, बेहद में भी गुजरात से शुरू हुआ तो अध में भी गुजरात से शुरू हुआ। उसके साथ भी कृष्ण मुरारी देसाई था, तो जयप्रकाश नारायण के साथ भी कैसे की सोल काम करती है? वहां भी इंदिरा गांधी डाउन कर दी गई,